ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड कल होने वाली प्रतिनिधि सभा बैठक में लेंगे विश्वास मत। प्रधानमंत्री के विश्वास मत न देने का अपने सांसदों के लिए नेपाली कांग्रेस ने जारी किया व्हीप। प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक स्थगित। सामाजिक सुरक्षा सेवा के लिए राष्ट्रीय परिचय पत्र तत्काल अनिवार्य न करने का मंत्रिपरिषद बैठक का निर्णय। मानसून की बारिश के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में राजमार्ग अवरूद्ध है, इसलिए सड़क की स्थिति को समझने के बाद ही यात्रा करने पुलिस ने किया सभी से अनुरोध। और नेटो सदस्यों ने यूक्रेन को अगले वर्ष 43.3 अरब डॉलर की सहायता देने का किया वादा। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सरकार का कोई भी मंत्री उपस्थित न होने के बाद बैठक को एजेंडा में शामिल किए बिना स्थगित कर दिया गया। सभामुख देवराज घिमरे ने एजेंडे से सभी चीजें हटाकर बैठक स्थगित कर दी, क्योंकि बैठक में कोई भी मंत्री और प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल यानी आषाढ़ 28 गते शुक्रवार सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। गौरतलब है कि कल के लिए बुलाई गई बैठक में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड विश्वास मत लेंगे। नेपाली कांग्रेस ने विश्वास के मत के लिए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड के प्रस्ताव के विपक्ष में मत देने के लिए अपने सांसदों को व्हीप जारी किया है। कांग्रेस के प्रमुख सचेतक रमेश लेखक ने कहा कि सभी सांसदों को बैठक में अनिवार्य उपस्थित होने के लिए तटस्थ नहीं रहने और प्रधानमंत्री प्रचंड ने अपने ऊपर प्रतिनिधि सभा का विश्वास है के प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान करने का व्हीप जारी किया है। जनमत पार्टी प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड को विश्वास मत नहीं देगी। पार्टी प्रवक्ता डॉ शरद सिंह यादव ने बताया कि पार्टी की आज हुई बैठक में प्रधानमंत्री प्रचंड को विश्वास मत न देने का फैसला किया गया है। दूसरी ओर बैठक ने नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के बीच हुए समझौते के अनुसार नवगठित सरकार को समर्थन करने का भी निर्णय किया है। इसी तरह राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा ने भी प्रधानमंत्री प्रचंड को विश्वास मत न देने का निर्णय किया है। यह जानकारी पार्टी के प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ ने दी। इसी तरह अशोक राय नेतृत्व की जनता समाजवादी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री प्रचंड को विश्वास मत न देने का निर्णय किया है। यह जानकारी प्रमुख सचेतक डॉ वीरेन्द्र प्रसाद महतो ने दी। दूसरी ओर बैठक ने नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के बीच हुए समझौते के अनुसार नवगठित सरकार को समर्थन करने का भी निर्णय किया है। राष्ट्रीय सभा के बैठक रविवार 1:15 बजे बैठने के हिसाब से स्थगित किया गया है। आज 1:15 बजे बुलाई गई बैठक विशेष कारणवश नहीं हो पाई, ये जानकारी अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल रविवार 1:15 बजे बैठने के हिसाब से समय तय हुआ है। ये जानकारी संघीय संसद सचिवालय के महासचिव पदम प्रसाद पांडे द्वारा जारी सूचना में उल्लेखित है। राष्ट्रीय सभा की आज के बैठक में आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाने का विधेयक और भंसार महसूल विधेयक पारित करने की कार्यसूची था। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय सभा की बैठक स्थगित होने के विषय पर ध्यानाकृष्ट कराया है। आज तय की गई राष्ट्रीय सभा के कार्यव्यवस्था परामर्श समिति की बैठक में अधिकांश सदस्यों के असहमति के बावजूद भी बैठक अचानक स्थगित हुई, जिस पर उन दलों को ध्यानाकर्षण कराया। इसी आसार 23 गते ही नियमित कार्यसूची में आए आर्थिक विधेयक 2081, राष्ट्र ऋण उठाने का विधेयक 2081, भंसार महसूल संबंधी विधेयक 2081 को पारित होना चाहिए, पर अर्थमंत्री के गलत मंशाएं के कारण आज के बैठक में अर्थमंत्री का अनुपस्थिति कहकर राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष ने उक्त दलों के असहमति के बावजूद बैठक स्थगित हुआ, ये जानकारी दल द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित है। सरकार ने सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग का कार्यसूची 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। आज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लापता व्यक्तियों की जांच आयोग और सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग की कार्यविधि 2082 साल आषाढ़ महीने तक बढ़ाने का निर्णय किया है। ये जानकारी सरकार की प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने दी। वहीं संचार मंत्री शर्मा ने कहा कि बैठक में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र की आवश्यकता के संबंध में अगली बैठक के फैसले को तुरंत लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह बैठक ने स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली संचालन निर्देशिका 2081 और सरकारी कोष की नकद व्यवस्थापन संबंधी कार्यविधि 2081 स्वीकृत किया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यमानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा है कि सरकार ने सूचना और संचार प्रविधि आईसीटी के महत्व को स्वीकार किया है और आईसीटी को नेपाल के रणनीतिक क्षेत्र के रूप में शामिल किया है। पुलचौक इंजीनियरिंग कॉलेज में एनटीए सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर आईसीटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उद्घाटन करते हुए मंत्री शर्मा ने बताया कि नेपाल की समृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आईसीटी को 16वीं योजना में महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। मंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार ललितपुर के खुमलटार में नॉलेज सेंटर संचालित करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि सातों प्रांतों में आईसीटी का विकास जरूरी है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा ने कहा कि संविधान में संशोधन सिर्फ इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि एक राजनीतिक दल ऐसा चाहता है। आज विराटनगर विमानस्थल पर मीडिया से बात करते हुए महामंत्री थापा ने कहा कि संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक प्रणाली को प्रभावित करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा। महामंत्री थापा ने बताया कि 7 सूत्री समझौते को लेकर पार्टी की कार्य संपादन समिति में व्यापक चर्चा हुई और पार्टी ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि लिखित समझौते को कोई भी हल्के में न ले। प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड की जीवन संगिनी सीता दाहाल के प्रथम स्मृति दिवस पर उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण किया गया है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आयोजित उक्त कार्यक्रम में प्रधानमंत्री दाहाल सहित उनके परिवार के सदस्यों ने सीता दाहाल के तस्वीर पर पुष्पगुच्छा एवं माल्यार्पण किये। नेपाल प्रहरी ने मनसूनी बारिश जारी होने व देश में विभिन्न क्षेत्रों के राजमार्ग में अवरुद्ध होने की बात बताते हुए रास्ते के बारे में पता लगाकर ही लंबी यात्रा पर जाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं डीआईजी दान बहादुर कार्की ने यात्रियों को बीच रास्ते पर ही फंसने की संभावित स्थिति को बताते हुए सड़क की स्थिति का पता लगाकर ही यात्रा करने का लोगों से अनुरोध किया है। नवलपरासी पूर्व नवलपुर में नदी में बहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति लापता है। मरने वालों में मध्य बिंदु नगर पालिका वार्ड नंबर 4 मदनपुर के 35 वर्षीय सूर्य परियार शामिल है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय नवलपुर के सूचना अधिकारी डीएसपी वेद बहादुर ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नेटो सदस्यों ने भविष्य में यूक्रेन को नेटो की सदस्यता देने पर अडिग रहने के साथ साथ अधिक सहायता देने का वादा किया है। हालांकि वाशिंगटन डीसी में आयोजित नेटो शिखर सम्मेलन से यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की औपचारिक समय सीमा पर सहमति नहीं बनी, लेकिन नेटो के 32 सदस्यों ने कहा कि यूक्रेन को उसके युद्ध प्रयासों के लिए अटूट समर्थन जारी रहेगा। नेटो ने यूक्रेन की सेना का साथ देने की भी घोषणा की है। साथ ही सदस्यों ने यूक्रेन को अगले वर्ष 43.3 अरब डॉलर की सहायता देने का वादा किया है। इसमें एक F-16 लड़ाकू जेट और वायु रक्षा सहायता शामिल है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कल होने वाली प्रतिनिधि सभा बैठक में लेंगे विश्वास मत। प्रधानमन्त्री के विश्वास मत न देने का अपने सांसद के लिए नेपाली कांग्रेस ने जारी किया व्हीप। प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक स्थगित। सामाजिक सुरक्षा सेवा के लिए राष्ट्रीय परिचय पत्र तत्काल अनिवार्य न करने का मंत्रिपरिषद बैठक का निर्णय। मानसून की बारिश के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में राजमार्ग अवरूद्ध है, इसलिए सड़क स्थिति को समझने के बाद ही यात्रा करने के लिए पुलिस ने किया सभी से अनुरोध। और नेटो सदस्यों ने यूक्रेन को अगले वर्ष 43.3 अरब डॉलर की सहायता देने का किया वादा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।